ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के चौथे चरण को फिर से लागू किया गया। मुख्यमंत्री आतिशी ने बुराड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर गांव में राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए अकादमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को स्मार्ट पहचान पत्र वितरित किए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सरकार पर कैग की 14 रिपोर्टों को जानबूझकर सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगाया और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार पहल को हरी झंडी दिखाई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के चौथे चरण को फिर से लागू कर दिया है। एक रिपोर्ट।
ग्रैप 4 के लागू होने से राजधानी में ट्रक लोडर समेत भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। इसके तहत दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले BS4 वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल से चलने वाले वाहनों के प्रवेश को दिल्ली में आने की अनुमति है। वहीं आयोग ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस, हृदय, मस्तिष्क संबंधी या अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचने और जितना संभव हो सके घर के अंदर रहने की सलाह दी है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 5वीं तक की कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके में से जो भी संभव हो उस तरह से करने को कहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली एनसीआर में गिरते वायु गुणवत्ता सूचकांक के मद्देनजर गुरुग्राम के उपायुक्त ने सभी निजी संस्थानों और कॉरपोरेट दफ्तरों को आज से 50% वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने की सलाह दी है। उपायुक्त कार्यालय ने बताया कि वायु प्रदूषण के गंभीर प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति के निर्देशों के तहत लिया गया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने आज बुराड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर गांव में स्थित राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक नए अकादमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए ब्लॉक से 1000 से अधिक बच्चों को फायदा होगा और शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। सुश्री आतिशी ने कहा कि इस नए ब्लॉक में वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो दिल्ली के बड़े प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं होती। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गरीब बच्चों को भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल रही है।
इस शानदार बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद ना ही हमारे बच्चों को अच्छी बिल्डिंग मिल रही है पर उनकी शिक्षा की जो क्वालिटी है वो भी और बेहतर होगी। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। जिन सब चीजों को हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे कि कंपास क्या होता है, रेन गेज क्या होता है, प्रेशर गेज क्या होता है, वो सारी इक्विपमेंट, वो सारे मॉडल्स आज हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मौजूद है।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों से संवाद किया और उन्हें स्मार्ट पहचान पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि समाज के लिए वरिष्ठ नागरिक ज्ञान और अनुभव का भंडार हैं। उन्होंने सभी वरिष्ठ नागरिकों से उनके अनुभवों को राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा में प्रयोग करने की अपील की। कार्यक्रम में 400 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया जिनमें 90 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार पर कैग रिपोर्टों को सार्वजनिक न कर लोगों से तथ्य छिपाने का आरोप लगाया। उपराज्यपाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि कैग रिपोर्ट शासन में पारदर्शिता की कसौटी है और इसमें देरी से जनता का भरोसा कम होता है। उपराज्यपाल ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन, शराब और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर रिपोर्ट 1.5 साल से लंबित है। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सरकार पर कैग की 14 रिपोर्टों को जानबूझकर सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगाया।
2017-18 से लेकर 2021-22 के बीच में CAG ने अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ शराब पर एक्साइज ड्यूटी, प्रदूषण एवं जो और फाइनेंस इश्यूज थे उसकी गड़बड़ियों को लेकर 14 प्रमुख रिपोर्टें दी जिन्हें सरकार आज तक दबा के बैठी। पर अरविंद केजरीवाल ये बात जानते थे कि अगर उस सीएजी रिपोर्ट को उन्होंने पटल पर रखा तो आर्थिक घोटाले के मुकदमे बनेंगे और इसलिए वो लगातार एक के बाद एक 14 रिपोर्टों को दबाते रहे।
श्री सचदेवा ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से 21 दिसंबर को एक विशेष सत्र बुलाकर इन रिपोर्टों को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मांग की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव ने आज आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की घोषित सूची के 21 उम्मीदवारों का प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं के समक्ष परिचय कराया। इस दौरान श्री यादव ने कहा कि पहली सूची में अनुभवी, सक्षम, युवा, महिला सभी वर्गों को समाहित करके कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस अगली सूची की घोषणा करेगी जिस पर चर्चा चल रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राज्यसभा में आज आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाता सूची से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम हटाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की अपील पर पूर्वांचल के क्षेत्रों के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। श्री सिंह सदन में संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दौरान अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे।
हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें।
वहीं श्री सिंह के आरोपों का प्रतिवाद करते हुए सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के आरोप बेबुनियाद हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने का कार्य एक विधि सम्मत प्रक्रिया से होता है और इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत देखा जाना चाहिए।
मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है और उसमें देखने वाली बात ये है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे।
चर्चा के दौरान संजय सिंह के कथित आपत्तिजनक बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित दो विधेयक आज लोकसभा में पेश किए गए। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जैसे ही संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 2024 सदन में पेश किए तो विपक्षी दलों ने मत विभाजन की मांग की। 269 सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में और 198 सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित विपक्षी दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने का विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के पक्ष में नहीं है और वो इसे पेश किए जाने का विरोध करेगी।
हम वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। वो संविधान की मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को हटाने के लिए, लोकतंत्र को चुप करने के लिए ये चलाया जा रहा है। एक तंत्र का तोप का एक हथियार है वन नेशन वन इलेक्शन। और मैं कह दूं, वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक एक बिगुल है संविधान बदलने का।
एक राष्ट्र एक चुनाव पर हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट।
देश में एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा नई नहीं है। इससे पहले 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के 400 से अधिक चुनाव हो चुके हैं। एक साथ चुनाव कराने से न केवल संसाधनों की बचत होगी बल्कि आदर्श आचार संहिता के कारण विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं कर पाने की बाधा भी दूर होगी। एक बार जब यह विधेयक कानून बन जाएगा तो इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे और दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव आम चुनाव के 100 दिन के भीतर कराए जाएंगे। एक साथ होने वाले चुनाव से मतदाता एक ही दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के लिए मतदान कर सकेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार पहल को हरी झंडी दिखाई। श्री मांडविया ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में सुधार के प्रति जागरूकता के साथ स्वस्थ और हरित भारत का निर्माण करना है। मंत्री ने नागरिकों को कम से कम एक घंटे तक साइकिलिंग जैसी किसी न किसी शारीरिक गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया।
हर संडे साइकिलिंग करेंगे और मैं चाहता हूँ साइकिलिंग को फैशन के रूप में करें और बाद में पैशन में कन्वर्ट करें। मैं सांसद होते हुए कई सालों तक साइकिल लेके ही पार्लियामेंट जाता रहा ताकि एक जनता में अवेयरनेस आए। देश में साइकिलिंग के लिए अवेयरनेस है, लोग साइकिलिंग करना चाहते हैं, ऐसे ग्रुप से उसको और प्रमोशन मिल सकता है और व्यक्ति अपने स्वयं को फिट रख सकता है। हम साइकिल का उपयोग करें तो मैं मानता हूँ कि साइकिल पोल्यूशन का सोल्यूशन भी हो सकता है।
फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूजडेज फिट इंडिया आंदोलन के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज कहा कि भारत में न केवल ऊर्जा क्रांति हो रही है बल्कि अब देश विश्व की नवीकरणीय ऊर्जा की राजधानी बनने जा रहा है। नई दिल्ली में 5वें CII अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में इस समय विश्व का सर्वाधिक संभावनाओं वाला देश है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल और नवंबर के बीच भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 15 गीगावाट की वृद्धि की है।
बिटवीन अप्रैल टू नवंबर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर इंडिया एडेड 15 गीगावाट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। दिस इज डबल द लास्ट ईयर एट द सेम पीरियड। टुडे आवर टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सेक्टर हैज टच 214 गीगावाट। दिस इज मोर देन 14% इंक्रीज कंपेयर टू द सेम मंथ लास्ट ईयर।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने निवारक स्वास्थ्य सेवा, महिला स्वास्थ्य और स्वदेशी वैक्सीन के विकास में भारत की प्रगति की जानकारी दी। आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत ने सर्वाइकल कैंसर का सस्ता और प्रभावशाली टीका विकसित किया है। उन्होंने कहा कि यह टीका भारत की जनसंख्या के लिए एक वरदान है जहां सर्वाइकल कैंसर के कारण करीब 1,00,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2025 से भर्ती परीक्षाओं की बजाय उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने पर विशेष ध्यान देगी। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार 10 नए पदों का सृजन कर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का पुनर्गठन करने की योजना बना रही है। दिल्ली सरकार ने सरकार की सभी इमारतों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस निर्णय को बिजली बचत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए इस पहल को मंजूरी दी। अब इसे उपराज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली के दो स्कूलों को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार रानीबाग के एक स्कूल को सुबह 8 बजे बम से उड़ाने की धमकी मिली थी जिसे जांच के बाद अफवाह घोषित कर दिया गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर आयोजित सरस फूड महोत्सव का आज समापन हुआ। 17 दिन तक चलने वाले सरस फूड महोत्सव ने करीब 3.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप के चौथे चरण को फिर से लागू किया गया। मुख्यमंत्री आतिशी ने बुराड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर गांव में राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए अकादमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को स्मार्ट पहचान पत्र वितरित किए और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार पहल को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।